नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रैंडल हाइट की राइट ब्रेक कोड वॉल्यूम 1 सेकेंड एडिशन अंडरस्टैंडिंग द मशीन प्रोग्रामरों के लिए कंप्यूटर संगठन का व्यावहारिक परिचय है। यह ना तो असेंबली भाषा सिखाने वाली पुस्तक है, ना किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा की मार्गदर्शिका। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय भाषाओं में काम करने वाले डेवलपर को यह समझाना है कि उसके निर्देश, डेटा और लाइब्रेरी अमूर्तताओं के पीछे मशीन वास्तव में क्या करती है। हाइट का केंद्रीय तर्क है कि दक्ष कोड लिखने के लिए केवल भाषा के वाक्य विन्यास को जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि निष्पादन की लागत डेटा निरूपण, प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट की भौतिक सीमाओं से बनती है। पुस्तक संख्या और कैरेक्टर निरूपण, बिट संचालन, मेमोरी व्यवस्था, डिजिटल लॉजिक, CPU आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट और बाहरी उपकरणों के संचार जैसे विषयों को जोड़ती है। दूसरा संस्करण आधुनिक 64-बिट प्रोसेसरों, आर्म आधारित मोबाइल उपकरणों, स्विफ्ट और जावा जैसी भाषाओं, बड़े मेमोरी तंत्रों तथा SSD के संदर्भ भी शामिल करता है। इसलिए यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की निर्णायक कड़ी को स्पष्ट करने वाली तकनीकी पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटा निरूपण से प्रोग्राम की वास्तविक लागत को समझना। पुस्तक का एक आधारभूत विषय यह है कि कंप्यूटर में डेटा वैसा नहीं होता जैसा प्रोग्रामर को स्रोत कोड में दिखाई देता है। पूर्णांक, साइन वाले और साइन रहित मान, फ्लोटिंग पॉइंट संख्याएं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और स्थिरांक सभी बिटों के निश्चित विन्यास के रूप में रखे जाते हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि हर प्रकार की सीमा और हर गणना का व्यवहार उसके बाइनरी निरूपण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सीमित बिट चौड़ाई वाले पूर्णांक में ओवरफ्लो संभव है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट में अनुमानित मान, राउंडिंग और कुछ ऐसे विशेष मान होते हैं जो साधारण गणितीय अंतर्ज्ञान से अलग परिणाम दे सकते हैं। हाइड इन बातों को केवल सिद्धांत नहीं मानते, बल्कि प्रकार चुनने और डेटा पर काम करने की लागत से जोड़ते हैं। कैरेक्टर सेट और स्ट्रिंग भंडारण को समझने से डेवलपर को एन्कोडिंग, प्रति कैरेक्टर स्थान और टेक्स्ट संचालन के प्रभाव दिखते हैं। इसी तरह बिट स्तर के ऑपरेशन ये बताते हैं कि मास्क, फ्लैग और कॉम्पैक्ट डेटा को मशीन कितनी प्रत्यक्षता से संभाल सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि डेटा प्रकार किसी भाषा का सुविधाजनक लेबल भर नहीं है। वह मेमोरी उपयोग, गणना की शुद्धता, तुलना के नियम और कभी कभी पूरी एल्गोरिथमिक रणनीति को प्रभावित करने वाला मशीन स्तर का निर्णय है। दूसरा, मेमोरी पदानुक्रम और डेटा विन्यास को प्रदर्शन के केंद्र में रखना। हाइट के अनुसार बहुत से प्रदर्शन प्रश्नों का उत्तर केवल यह देखकर नहीं मिलता कि कौन सा निर्देश तेज है। अक्सर निर्णायक बात यह होती है कि आवश्यक डेटा किस स्थान पर है और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पुस्तक मेमोरी संगठन और पदानुक्रम के माध्यम से बताती है कि प्रोसेसर की गति, मुख्य मेमोरी की गति और स्थायी भंडारण की गति में बड़ा अंतर होता है। कैश का उद्देश्य बार बार उपयोग होने वाले या निकट स्थित डेटा को प्रोसेसर के पास रखना है, पर उसका लाभ तभी मिलता है जब प्रोग्राम का डेटा पहुंच पैटर्न अनुकूल हो। इसलिए एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और संयुक्त डेटा प्रकारों का लेआउट केवल पठनीयता का विषय नहीं रहता। बिखरे हुए ऑब्जेक्ट, अनावश्यक इंडायरेक्शन और ऐसी यात्राएं जिनमें डेटा कम से नहीं पढ़ा जाता, कैश उपयोग को कमजोर कर सकती है। इसके विपरीत, निकट उपयोग होने वाले डेटा को साथ रखना और क्रमिक पहुंच को प्राथमिकता देना मेमोरी तंत्र के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है। पुस्तक वर्चुअल मेमोरी और बड़े मेमोरी सिस्टम की भूमिका के संदर्भ में यह भी रेखांकित करती है कि पता एक अमूर्त अवधारणा है, पर उसके पीछे वास्तविक भौतिक और व्यवस्थापकीय लागत मौजूद रहती है। यह दृष्टि माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन की जगह डेटा संगठन को प्रदर्शन सुधार का प्रमुख क्षेत्र बनाती है। तीसरा, CPU निष्पादन, इंस्ट्रक्शन सेट और कंपाइलर के बीच संबंध। यह पुस्तक उच्च स्तरीय कथनों को मशीन की संभावित गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करती है। किसी भाषा में लिखा गया साधारण असाइनमेंट, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एरे एक्सेस या फंक्शन कॉल, CPU के लिए डेटा लाने, पते बनाने, निर्देश चलाने और परिणाम रखने की कई प्रक्रियाओं में बदल सकता है। हाइट CPU संगठन और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के माध्यम से दिखाते हैं कि रजिस्टर, एड्रेसिंग मोड, निर्देशों की प्रकृति और नियंत्रण प्रवाह को समझना उपयोगी क्यों है। इससे प्रोग्रामर को यह अनुमान लगाने की क्षमता मिलती है कि समान दिखने वाले दो कोड खंडों की लागत अलग क्यों हो सकती है। आधुनिक प्रोसेसरों में पाइपलाइनिंग, समानांतर आंतरिक निष्पादन और क्रम से भिन्न निष्पादन जैसी अवधारणाएं भी इस सरल धारणा को चुनौती देती हैं कि हर स्रोत पंक्ति का एक निश्चित अलग समय होता है। पुस्तक का उद्देश्य हर पाठक को मशीन कोड लिखवाना नहीं है, उसका लक्ष्य इतना निम्न स्तरीय बोध देना है कि डेवलपर कंपाइलर से अवास्तविक अपेक्षाएं न रखे और अपने डेटा तथा नियंत्रण संरचनाओं को बेहतर ढंग से चुने। दूसरा संस्करण आधुनिक 64-बिट कोड जनरेशन और आर्म प्रोसेसरों का संदर्भ देकर इस संबंध को समकालीन प्लेटफॉर्मों तक विस्तृत करता है। फिर भी मुख्य शिक्षा स्थिर रहती है, कंपाइलर अनुवाद करता है, लेकिन स्रोत स्तर पर बेहतर संरचना चुनने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की होती है। चौथा, बूलियन लॉजिक और बिट संचालन से नियंत्रण प्रवाह की मशीन समझ। पुस्तक बूलियन लॉजिक, डिजिटल डिजाइन और बिट संचालन को अलग थलग इलेक्ट्रॉनिक्स विषय नहीं मानती। ये अवधारणाएं उन शर्तों और निर्णयों की नींव है जिन्हें प्रोग्रामर प्रतिदिन इफ वाइल तुलना और फ्लैग जांच के रूप में लिखता है। बूलियन अभिव्यक्ति के परिणाम अंततः बिट स्तर पर सत्य या असत्य स्थिति में बदले जाते हैं और प्रोसेसर इन्हीं स्थितियों के आधार पर नियंत्रण प्रवाह तय करता है। इस कारण तार्किक ऑपरेटरों, बिट मास्क, शिफ्ट और संयोजन का ज्ञान यह समझने में मदद करता है कि छोटी स्थिति जांचों को कैसे दर्शाया और संचालित किया जाता है। हाइड का व्यापक बिंदु यह है कि प्रोग्रामर को डिजिटल सर्किट डिजाइनर बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लॉजिक की मशीन भाषा जानने से वह शर्तों की संरचना और डेटा में स्थिति सूचनाओं के उपयोग को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब कई स्वतंत्र स्थितियों को सीमित स्थान में रखना हो, प्रोटोकॉल या डिवाइस डेटा पढ़ना हो, अथवा निम्न स्तरीय API के फ्लैगों के साथ काम करना हो। साथ ही यह विषय एक सावधानी भी देता है। बिट स्तर की चतुराई तभी उपयोगी है जब वह कोड की शुद्धता और समझने योग्य संरचना को क्षति न पहुंचाए। पुस्तक दक्षता को रहस्यमय तरकीबों से नहीं बल्कि तार्किक प्रतिनिधित्व और मशीन व्यवहार की समझ से जोड़ती है। अंत में इनपुट आउटपुट, परिधीय उपकरण और धीमी बाहरी दुनिया की सीमाएं, अंडरस्टैंडिंग द मशीन का दायरा केवल CPU और RAM तक सीमित नहीं है। पुस्तक इनपुट आउटपुट की ओर ध्यान दिलाती है जहां प्रोग्राम को डिस्क, SSD, नेटवर्क, स्क्रीन और अन्य परिधीय उपकरणों के साथ संवाद करना पड़ता है। इन संसाधनों की गति और संचालन मॉडल प्रोसेसर से बहुत अलग होते हैं, इसलिए केवल गणना को तेज कर देना पूरे अनुप्रयोग को तेज नहीं बनाता। जब प्रोग्राम किसी बाहरी उपकरण की प्रतीक्षा करता है तब विलंब का स्रोत डेटा ट्रांसफर, बफरिंग, अनुरोधों की संख्या या ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होने वाला समन्वय हो सकता है। हाइड का दृष्टिकोण डेवलपर को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि छोटे छोटे अलग अनुरोधों के बजाय डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कब बफरिंग उपयोगी हो और किस चरण में CPU अनुकूलन का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। दूसरा संस्करण नए परिधीय उपकरणों, बड़े स्टोरेज तंत्रों और बड़े पैमाने के SSD संदर्भों के साथ विषय को आधुनिक बनाता है। फिर भी मूल सिद्धांत नहीं बदलता, प्रणाली का प्रदर्शन उसके सबसे धीमे या सबसे अधिक प्रतीक्षित हिस्से से निर्धारित हो सकता है। इसीलिए पुस्तक दक्षता को केवल निर्देशों की गिनती नहीं बल्कि पूरे डेटा पथ और उपकरण संपर्क की समस्या के रूप में प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामरों के लिए सबसे उपयोगी है जो जावा, स्विफ्ट, C++ या किसी अन्य आधुनिक भाषा में काम करते हुए प्रदर्शन, मेमोरी व्यवहार और डेटा संरचना के वास्तविक प्रभाव समझना चाहते हैं। यह विशेष रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड विकास, गेम, डेटाबेस, कंपाइलर, रनटाइम या प्रदर्शन संवेदनशील सेवाओं में रुचि रखने वालों के लिए ठोस आधार बना सकती है। औपचारिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर शिक्षा न पाने वाले अनुभवी डेवलपर भी इससे उन रिक्तियों को भर सकते हैं जो सामान्य प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रमों में रह जाती है। शुरुआती पाठक के लिए विषय घना हो सकता है क्योंकि यह केवल भाषा के मूल नियमों से आगे जाता है, लेकिन जिज्ञासु पाठक को असेंबली में पूर्ण दक्षता के बिना भी मशीन स्तर का उपयोगी मानसिक मॉडल मिलता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर इसका लक्षित संतुलन है। यह न तो केवल हार्डवेयर इंजीनियरिंग का पाठ है, न केवल असेंबली संदर्भ ग्रंथ और न ही सतही प्रदर्शन नुस्खों की सूची, हाइड डेटा निरूपण, लॉजिक, मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट को उस प्रश्न से लगातार जोड़ते हैं जो सॉफ्टवेयर लेखक के लिए मायने रखता है, लिखे गए कोड का मशीन पर क्या परिणाम होगा। दूसरा संस्करण 64-बिट और ARM संदर्भों से इसकी उपयोगिता बढ़ाता है। हालांकि किसी खास प्लेटफॉर्म के अत्यंत नवीन अनुकूलन के लिए अतिरिक्त स्रोतों की जरूरत पड़ सकती है, पुस्तक का मूल बोध स्थायी है। यह पाठक को अनुमान के बजाय कारण आधारित प्रदर्शन विश्लेषण की भाषा देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रैंडल हाइड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।